नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गुजरात में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों पर हो रहे अन्याय को समाप्त करने और उनके लिए विकास के लाभ सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प दोहराया। बिहार में सरकार गठन के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने चर्चा शुरू की। यूक्रेन ने रूस के शहर नोवोरोसियस्क में प्रमुख तेल टर्मिनल पर हमला किया। जवाब में रूस ने ड्रोन और मिसाइलें दागी। गोवा में फिडे शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी दो बार के चैंपियन लेवोन एरोनियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और कोलकाता में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 93 रन पर 7 विकेट गंवाए। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जनजातीय बहुल नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा कस्बे में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर केंद्रित हैं। ये परियोजनाएं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर महान जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई हैं। इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पावन अवसर पर हमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए।
आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आज यहां देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1,00,000 परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल स्कूलों और आश्रम स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
श्री मोदी ने कहा कि जनजातियों का कल्याण हमेशा से उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने और विकास का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए सरकार के अटूट संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न अंग रहा है।
जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया।
एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। सूरत में रहने वाली बिहारी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के मतदाताओं की प्रशंसा की।
बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है। दुनिया में कहीं जाइए बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी और ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माय कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है।
इससे पहले दिन में श्री मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। राष्ट्र आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने जनजातीय इतिहास को जीवित रखने के महत्व को समझते हुए 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। एक रिपोर्ट।
पिछले 10 वर्षों में आदिवासी विकास का सपना अब एक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। आदिवासी समुदायों पर होने वाले खर्च 2014 के 24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज 42 मंत्रालय अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में 200 से अधिक योजनाएं चला रहे हैं। पीएम जनमन मिशन के तहत अब तक 90,000 पक्के घर बनाए गए हैं और 92,000 से अधिक घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। इसी मिशन के अंतर्गत 700 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की अनुमति भी दी गई है। वहीं करीब 6,700 गांवों में पाइप से पानी की सुविधा शुरू हो गई है और 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र अब कार्यरत हैं। जनजातीय समूहों की शिक्षा पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र में पिछले 10 सालों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति दी गई है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण और किफायती दवाएं अमृत पहल के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में अमृत की 10वीं वर्षगांठ पर कहा कि इस कार्यक्रम ने पिछले 10 वर्ष में रोगियों की लगभग 8,500 करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 255 अमृत फार्मेसी हैं।
10 years of journey. अमृत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हमें 10 वर्ष हो गए हैं और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं अमृत के माध्यम से व्यापक जन सेवा कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं HLL को भी बधाई देना चाहता हूं। ये सार्वजनिक क्षेत्र में HLL द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों में से एक है। मुझे बताया गया है कि अब हमारे पास 255 फार्मेसीज हैं।
Now we have got 255 pharmacies.
श्री नड्डा ने पूरे देश में 10 नई अमृत फार्मेसी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय और प्रत्येक जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी स्थापित की जानी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। श्री सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन के सर्वसम्मत नेता हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सरकार गठन की प्रक्रिया के बारे में कहा कि 2 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही इस बारे में फैसला लेगा। केरल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने आज तिरुवनंतपुरम में सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने कहा कि केरल में 85% गणना प्रपत्र पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में प्रपत्र का वितरण धीमी गति से हो रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि इसके वितरण के लिए BLO की सहायता सुनिश्चित की जाए। श्री केलकर ने यह भी कहा कि जिन लोगों को अभी तक ये प्रपत्र नहीं मिले हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सरकार ने अज्ञात इलेक्ट्रॉनिक बाधा के कारण 2 घंटे में भारतीय वायुसेना के 3 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के पाकिस्तानी समर्थक हैंडल के झूठे दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि ये भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण विमान था जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। सरकार ने नागरिकों से ऐसी गलत सूचनाओं से सावधान रहने और उन पर विश्वास करने या उन्हें साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने का भी आग्रह किया है। भारतीय वायुसेना कल से फ्रांस में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुण 25 के 8वें संस्करण में भागीदारी करेगी। ये 27 नवंबर तक फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ ये अभ्यास करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं में सुधार करना है। यूक्रेन के कल रात रूस पर हमले में वहां के बंदरगाह शहर नोवोरोसियस्क में एक प्रमुख तेल टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों ने इस हमले की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट।
यूक्रेन के सेना प्रमुख ने कहा है कि हमले में बंदरगाह और तेल टर्मिनल पर बुनियादी ढांचे के साथ रूस की S-400 वायु रक्षा प्रणाली को भी नुकसान हुआ है। रूस ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेन के ड्रोन के टुकड़े तेल डिपो से टकराए हैं। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं और 4 इमारतें तथा 2 निजी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रात भर में यूक्रेन के 216 ड्रोन को रोका गया। इस बीच रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले किए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि राजधानी कीव में रूस के हमलों में 7 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इस वर्ष का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत की परंपराओं का उत्सव मनाने वाली रंगारंग सांस्कृतिक परेड के साथ शुरू होगा। ये महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी में 20 से 28 नवंबर तक चलेगा। इसमें 80 से अधिक देशों के अतिथि और फिल्म निर्माता शामिल होंगे। महोत्सव में भारत और विदेशों की 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। सबसे पहले ब्राजील की फिल्म द ब्लू ट्रेल का प्रदर्शन होगा। दिग्गज फिल्म कलाकारों गुरुदत्त, राजखोसला, भानुमति, भुवन, ऋत्विक और रजनीकांत तथा बालकृष्ण को भारतीय सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने महोत्सव पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इसमें वेव्स फिल्म बाजार और युवा रचनाकारों, महिला निर्देशकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित फिल्म निर्माण में नए प्रयोगों को सहयोग देने के लिए विशेष मंच भी शामिल होंगे।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल,
इस बार एक विशेष परेड का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न राज्यों और गोवा सरकार के विभागों की करीब 34 झांकियां होंगी। ये झांकियां क्षेत्रीय कला, संस्कृति और अन्य अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करेंगी। इनके द्वारा भारतीय लोकाचार, पद्धतियों और देश की समृद्ध संस्कृति प्रस्तुत की जाएगी।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMRC ने कहा कि बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं। सोमवार को दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने देश के पूंजी बाजारों में भारतीय निवेशकों के बढ़ते भरोसे का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 तक भारत में लगभग 13 करोड़ 60 लाख निवेशकों के 21 करोड़ से अधिक डीमैट खाते हैं, जो बाजार पर भरोसे का संकेत है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अलग अलग स्थानों पर कल बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश में कल शीतलहर की स्थिति रहेगी। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने आज 2 बार के चैंपियन लेवोन आरोनियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अर्जुन ने पहला मुकाबला ड्रॉ खेला, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। वहीं पेंताला हरिकृष्णा ने जोस मार्टिनेस के साथ लगातार दूसरा क्लासिकल मुकाबला भी ड्रॉ किया। टाई ब्रेकर के लिए मुकाबले कल खेले जाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 93 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में भारतीय टीम ने 189 रन बनाए। भारत को 30 रन की बढ़त हासिल है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गुजरात में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों पर हो रहे अन्याय को समाप्त करने और उनके लिए विकास के लाभ सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प दोहराया। बिहार में सरकार गठन के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने चर्चा शुरू की। यूक्रेन ने रूस के शहर नोवोरोसियस्क में प्रमुख तेल टर्मिनल पर हमला किया, जवाब में रूस ने ड्रोन और मिसाइलें दागी। गोवा में फिडे शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी 2 बार के चैंपियन लेवोन एरोनियन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और कोलकाता में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 93 रन पर 7 विकेट गंवाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।